अध्याय संख्या 17 प्रक्षेपीय विधियाँ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रक्षेपीय विधियों की सर्वाधिक संपूर्ण विशेष व्यक्ति के अचेतन को जानना है। प्रक्षेपण से अभिप्राय इस अचेतन प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त करता है। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्ति के सम्मुख किसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को इस बात के अवसर दिए जाते हैं कि वह अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को उस परिस्थिति में आरोपित कर सके। प्रक्षेपण प्रविधि और संरचित होती हैं तथा इनकी प्रतिक्रियाएं सही या गलत ना होकर व्यक्ति की सहज व्याख्याएं या रचना करती हैं। व्यक्तित्व संरचना को जानने के लिए अनेक प्रक्षेपण विधियों का विकास किया जा चुका है। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के द्वारा दी जाने वाली प्रक्रियाओं के आधार पर प्रक्षेपीय विधियों को 5 प्रकार में बांटा जा सकता है। प्रथम, साहचर्य तकनीकें, एसोसिएशन टेक्निक्स। द्वितीय, रचना तकनीकें, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। थर्ड, पूर्ति तकनीकें, कंप्लीशन टेक्निक्स। फोर्थ, क्रम या पसंद तकनीकें, ऑर्डरिंग और चॉइस टेक्निक्स। 5, अभिव्यक्ति तकनीकें, इम्प्रेसिव टेक्निक्स। साहचर्य तकनीक में व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत उद्दीपक से संबंधित कोई प्रक्रिया प्रस्तुत करनी होती है। प्रस्तुत किए गए उद्दीपकों के आधार पर साहचर्य तकनीक भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे शब्द साहचर्य तकनीक, चित्र साहचर्य तकनीक तथा वाक्य साहचर्य तकनीक, जिसमें क्रमशः शब्दों, चित्रों तथा वाक्यों को उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की जाती हैं। रचना तकनीक में व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत उद्दीपकों के आधार पर कोई रचना तैयार करने के लिए कहा जाता है, जैसे किसी उद्दीपन के आधार पर कहानी लिखवा कर या चित्र बनवा कर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पूर्ति तकनीक के अंतर्गत किसी अधूरी रचना को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति के से उस अधूरी रचना को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। वाक्य पूर्ति, कहानी पूर्ति तथा चित्र पूर्ति इस तकनीक के प्रयोग के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। क्रम तकनीक में व्यक्ति के सम्मुख कुछ शब्द, कथन, विचार, भाव, चित्र, वस्तुएं इत्यादि प्रस्तुत की जाती हैं तथा उससे इन वस्तुओं को अपनी पसंद के अनुरूप किसी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। अभिव्यक्त तकनीकी के अंतर्गत व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत किए गए उद्दीपनों पर अपनी प्रतिक्रियाएं मन चाहे रूप से अभिव्यक्त करनी होती हैं। यद्यपि उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपी तकनीकों के आधार पर अनेक प्रक्षेपी परीक्षणों का निर्माण किया जा चुका है, तथापि रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण, रोसार्क इंक ब्लॉक्ड टेस्ट तथा मरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मर्रे थीमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट सर्वाधिक प्रचलित प्रक्षेपी विधि है। वैसे इसके अतिरिक्त बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, शब्द साहचर्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मोजेक टेस्ट, शाब्दिक पूर्ति परीक्षण वर्बल कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ ए मैन आदि के द्वारा भी व्यक्तित्व के प्रक्षेपी प्राविधि से मापा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण तथा मरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है तथा अन्य कुछ परीक्षणों को संक्षेप में चर्चा की जा रही है। रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण, रोसार्क RORSCHACH इंक ब्लॉट टेस्ट। रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण व्यक्तित्व को प्रक्षेपी विधि से मापने वाला एक प्रसिद्ध तथा बहुतायत से प्रयुक्त किए जाने वाला परीक्षण है, जिसका निर्माण हरमन रोसा नाम से स्विस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। यद्यपि रोसा मसी लक्ष्य का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं था, फिर भी इस दिशा में उसका कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक था, जो सन 1911 से 1921 तक लगभग 10 वर्षों तक चला। रोसा ने व्यक्तित्व मापन के लिए मसी लक्ष्यों का उपयोग करने की तकनीक को विकसित किया। मसी लक्ष्यों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन करने की तकनीक के पीछे उसकी मान्यता लक्ष्यों की सहायता से व्यक्तित्व उसकी मान्यता थी कि व्यक्ति का कोई भी कार्य उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है, तथा यदि यह कार्य अपरंपरागत उद्दीपक परिस्थितियों से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगतता को सब प्रयास छुपा नहीं सकता, तो ऐसे कार्य उसके व्यक्तित्व को उतना ही अधिक अभिव्यक्त करते हैं। मसी लक्ष्यों के प्रति प्रतिक्रिया देते समय व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ होता है कि उसके द्वारा देखी जा रही बातों की रिपोर्ट में वह क्या कुछ बता रहा है, फिर भी उसके द्वारा बताई बातों से उसके व्यक्तित्व की झलक मिल पाती है। रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से प्रत्येक पर एक सममित मसी लक्ष्य इंक ब्लॉट स्याही धब्बा बना होता है। 5 कार्डों पर काले सफ़ेद में, 2 पर काले सफ़ेद व लाल रंग में तथा 3 पर अनेक रंगों में मसी लक्ष्य बने होते हैं। कार्ड संख्या 1, 4, 5, 6, 7 पर काले व सफ़ेद कार्ड पर कार्ड संख्या 2 व 3 पर काले सफ़ेद व लाल रंग में तथा कार्ड संख्या 9, 10 पर कई रंगों में मसी लक्ष्य बने होते हैं। ये कार्ड एक एक करके एक निश्चित क्रम में व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तथा पूछा जाता है कि मसी लक्ष्य में उसे क्या दिखाई दे रहा है या मसी लक्ष्य किस आकृति जैसा लग रहा है। व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। रोसा ने मसी लक्ष्य परीक्षण के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया तथा कार्डों के लिए प्रतिक्रियाओं की कोई निश्चित संख्या भी ज्ञात नहीं की गई। परीक्षार्थी जितना भी अधिक से अधिक प्रतिक्रियाएं देना चाहें दे सकते हैं। परीक्षक को परीक्षार्थी के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अक्षरशः लेखन करना होता है, अर्थात कार्डों के प्रति दी गई प्रतिक्रियाएं, विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बीच समय अंतराल, प्रत्येक कार्ड के प्रति दी गई प्रतिक्रियाओं में लगा कुल समय, कार्ड को किस तरह से हाथ में पकड़कर उसके प्रति प्रतिक्रिया दी गई आदि बातों को यथासंभव विस्तार से लिपिबद्ध कर लिया जाता है। 10 कार्डों पर प्रतिक्रियाएं जानने के बाद परीक्षण का दूसरा सोपान, जिसे जाँच इंक्वायरी कहते हैं, उसका अनुसरण किया जाता है। जांच के 2 मुख्य लक्ष्य उद्देश्य हैं। प्रथम मसी लक्ष्य के उन भागों अथवा पक्षों को जानना जिन्होंने परीक्षार्थी को प्रतिक्रिया देने के लिए अंश के लिए अभिमुख किया, अर्थात पूर्ण मसी लक्ष्य अथवा उसके भाग, छोटे छोटे अंश, स्थिति, रंग, शेड, गतिशीलता आदि सूचनाएं जिनकी अंकन में आवश्यकता होती है को जानना होता है। द्वितीय जांच परीक्षाओं को अपनी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने अथवा उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें स्पष्ट करने का अवसर देती है, परंतु यह अवसर परीक्षार्थी के लिए पूर्णतः स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस होने चाहिए तथा परीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार के सुझाव से रहित होने चाहिए। परीक्षक को केवल ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जो अंकन की दृष्टि से आवश्यक तथा सार्थक हों। परीक्षक के द्वारा बहुत अधिक प्रश्न पूछने या इंगित करने वाले प्रश्न पूछने पर परीक्षार्थी ऐसे उत्तर दे सकता है जो उसके मनोभावों को अभिव्यक्त ना होकर परीक्षक के द्वारा सुझाई गई बातों के उभर आने से आए हों। अंकन विधि, स्कोरिंग मेथड। रोसामसी लक्ष्य परीक्षण में परीक्षार्थी की विभिन्न कार्डों पर अनुक्रियाएं प्राप्त करने के लिए अनुक्रियाओं का वर्णन अंकन किया जाता है। इसके लिए अनुक्रियाओं से संबंधित चार मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। ये चार बातें हैं: प्रथम, स्थिति लोकेशन; द्वितीय, निर्धारक डिटर्मिनेंट्स; तृतीय, विषय वस्तु कंटेंट; चतुर्थ, लोकप्रिय तथा मौलिक प्रतिक्रियाएं ओरिजिनल एंड पॉपुलर्स। प्रथम, स्थिति लोकेशन। स्थिति शीर्षक के अंतर्गत यह देखा जाता है कि डब्बे के किस भाग के ऊपर व्यक्ति की प्रतिक्रिया आधारित है। पूरे डब्बे को देखकर, उसके किसी बड़े भाग को देखकर, उसके किसी छोटे भाग को देखकर, उसके बहुत ही छोटे हिस्से को देखकर अथवा डब्बे की सफ़ेद पृष्ठभूमि पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया आधारित हो सकती है। डब्बे की स्थिति या क्षेत्र स्पष्ट भी हो सकता है तथा अस्पष्ट भी। संपूर्ण धब्बे के आधार पर की गई प्रतिक्रिया को समग्र प्रतिक्रिया होल रिस्पॉन्स W। धब्बे के किसी बड़े भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को बृहद भाग प्रतिक्रिया लार्ज डिटेल D। धब्बे के किसी छोटे भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को लघु आंशिक प्रतिक्रिया स्मॉल डिटेल्स D। अस्वाभाविक भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को अस्वाभाविक आंशिक प्रतिक्रिया अनयूजुअल डिटेल्स D स्मॉल D तथा धब्बे की सफ़ेद पृष्ठभूमि पर आधारित प्रतिक्रिया को श्वेत स्थान प्रतिक्रिया वाइट स्पेसेस S कहा जाता है। स्थिति के ये पांच मुख्य भाग हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी अन्य संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे बहुत छोटे भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को लघु आंशिक प्रतिक्रिया टिनाई डिटेल्स स्मॉल D। किनारे पर स्थित भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को किनारा प्रतिक्रिया एज डिटेल्स के D स्मॉल E। धब्बे के मध्य भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को मध्यवर्ती आंशिक प्रतिक्रिया इनसाइड डिटेल्स D स्मॉल I। धब्बे के किसी बहुत ही छोटे भाग पर आधारित प्रतिक्रिया को दुर्लभ आंशिक प्रतिक्रिया रेयर डिटेल्स D स्मॉल R कहा जा सकता है। प्रतिक्रियाओं से संबंधित कुछ संभव स्थितियों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है। उपर्युक्त बातें ही सारणी में लिखी गई हैं। द्वितीय, निर्धारक डिटर्मिनेंट्स। निर्धारकों से तात्पर्य धब्बे की उन विशेषताओं अथवा पक्षों से है जिसकी वजह से व्यक्ति प्रतिक्रियाएं दे रहा है। निर्धारक पांच प्रकार के हो सकते हैं: आकार, छाया, रंग, दृष्टिकोण तथा गति। स्पष्ट आकार को F+, सामान्य आकार को F से, स्पष्ट आकार को F- से इंगित करते हैं। छाया को K से व्यक्त करते हैं। यदि आकार मुख्य होता है तथा साथ में छाया भी होती है तो इसे F K से, यदि छाया मुख्य होती है तो आकार गौण होता है तो K F दर्शाया जाता है। रंग C के संबंध में यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने किन रंगों को अपनी प्रतिक्रियाओं का आधार बनाया है तथा रंगों को आकार के साथ किस प्रकार जोड़ा है। जब केवल रंग ही होता है तथा आकार नहीं होता तो इसे C। जब रंग मुख्य होता है तथा आकार गौण होता है तो इसे C F से, तथा जब आकार मुख्य होता है रंग गौण होता है तो इसे F C से इंगित करते हैं। जब व्यक्ति धब्बे में किसी वस्तु को जाती हुई देखता है तो गति के लिए अंकन किया जाता है। मानवीय गति के लिए M, पार्श्विक गति के लिए F M तथा अन्य गतियों के लिए M प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के द्वारा चित्रों में त्रिविमीय दृष्टिकोण को कैपिटल एफ कैपिटल के से दर्शाया जाता है। निर्धारकों के संकेतों को आगे सारणी में दिया गया है। तृतीय विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को उनकी विषय वस्तु के आधार पर कुछ समूहों में विभक्त किया जाता है, जैसे मानव आकृति, पशु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य, मानव निर्मित वस्तुएं, शरीर के अंग, काम कला आदि। विषय वस्तु के आधार पर प्रतिक्रियाओं का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। जब व्यक्ति धब्बे में मानव आकृति देखे, वर्ग मानव आकृति चिन्ह कैपिटल एच। जब व्यक्ति धब्बे में मानव शरीर के किसी अंग को देखे, वर्ग मानव अंश चिन्ह कैपिटल एच स्मॉल डी। जब व्यक्ति धब्बे में किसी जंतु की आकृति को देखे, वर्ग जंतु आकृति चिन्ह कैपिटल ए। जब व्यक्ति धब्बे में जंतु आकृति को कोई भाग देखे, तो वर्ग जंतु आकृति का भाग चिन्ह कैपिटल ए स्मॉल डी। मौलिक तथा लोकप्रिय प्रतिक्रिया, ओरिजिनल्स एंड पॉपुलर्स। जिन प्रतिक्रियाओं को प्रायः सभी व्यक्ति दर्शाते हैं, उन्हें लोकप्रिय प्रतिक्रिया कहते हैं। लोकप्रिय प्रतिक्रियाओं को पी संकेताक्षर से दर्शाते हैं। जिन प्रतिक्रियाओं को बहुत कम व्यक्ति दर्शाते हैं, उन्हें मौलिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। इन्हें ओ संकेताक्षर से इंगित करते हैं। विभिन्न कारकों पर व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का अंकन करके फलांकन तालिका का निर्माण कर लिया जाता है। फलांकन तालिका का प्रारूप पिछले पृष्ठ पर दिया गया है। व्याख्या इंटरप्रिटेशन। फलांकन तालिका बनाने के उपरांत प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। इसके लिए विभिन्न भागों की आवृत्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों के बीच निम्न संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। प्रथम, कैपिटल डब्ल्यू तथा कैपिटल डी के बीच का अनुपात। द्वितीय, कैपिटल डब्ल्यू तथा स्मॉल डी का अनुपात। तृतीय, कैपिटल डब्ल्यू तथा स्मॉल डी और स्मॉल डी का अनुपात। चतुर्थ, कैपिटल एफ स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल एफ, कैपिटल सी स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल सी, कैपिटल एफ स्मॉल के का अनुपात। पंचम, रंग तथा गति वाली प्रतिक्रियाओं का अनुपात। षष्ठ, मानवीय गति का पार्श्विक गति से अनुपात। सप्तम, मौलिक प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत आदि आदि। अंकन के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों तथा विभिन्न अनुपातों व प्रतिशतों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। प्रतिक्रियाओं की स्थिति मुख्य रूप से व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। यदि कैपिटल डब्ल्यू का प्रतिशत अधिक होता है, तो व्यक्ति बौद्धिक संगठन तथा अमूर्तता की क्षमता अधिक है, परंतु मौलिक आवश्यकताओं प्रतिक्रियाओं प्रतिशत को भी यहाँ ध्यान में रखा जाता है। लोकप्रिय समग्रों पॉपुलर डी सामान्य विचार शक्ति को इंगित करते हैं। कैपिटल डी की अधिक प्रतिक्रियाएं स्थूल व प्रयोगात्मक मानसिक क्षमता को बतलाती हैं। सभी कार्डों के साथ एक ही जैसी प्रतिक्रियाएं देने वाला व्यक्ति दृढ़ माना जाता है। स्मॉल डी अधिक होने से माना जा सकता है कि वह छोटी छोटी बातों को अधिक ध्यान देता है। एफ प्लस और एफ के अधिक होने वाले व्यक्ति को आत्मनियंत्रित माना जाता है, जबकि एफ माइनस अधिक होने पर संवेगात्मक रूप से असंतुलित माना जाता है। रंग व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति को बताते हैं। कैपिटल एफ कैपिटल सी संवेगात्मक नियंत्रण व सामाजिक संयोजन को, कैपिटल सी कैपिटल एफ आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व को तथा सी संवेगात्मक उद्दीपनता को इंगित करते हैं। अपर्याप्तता की भावना के रूप में विवेचित किए जाते हैं। गति की अनुक्रियाएं सामाजिक संबंधों को अभिव्यक्त करती हैं। कैपिटल ओ के अधिक होने पर व्यक्ति सृजनशील होता है। प्रक्षेपी तकनीकों की विश्वसनीयता तथा वैधता ज्ञात करना अत्यंत दुरूह कार्य है। अंकन में व्यक्तिनिष्ठता होने, प्रतिक्रियाओं की संख्या व प्रकृति अनिश्चित होने तथा व्याख्या की प्रकृति सामूहिक होने के कारण विश्वसनीयता तथा वैधता ज्ञात करने की कोई संतोषजनक विधि का उपलब्ध होना कठिन हो जाता है। रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण की विश्वसनीयता की तथा वैधता परीक्षण को प्रशासित करने, अंकन करने तथा व्याख्या करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। एक अनुभवी तथा प्रशिक्षित मनोमितिक रोसा परीक्षण का प्रयोग करके विश्वसनीय तथा वैध परिणाम प्राप्त कर सकता है। अन्य मसी लक्ष्य परीक्षण। मसी लक्ष्यों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन करने के अन्य अनेक प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए होल्ट्जमैन HOLTZMAN होल्ट्जमैन ने मसी लक्ष्यों की सहायता से व्यक्तित्व के मापन का एक कुछ भिन्न विधि का विकास किया। होल्ट्जमैन की मसी लक्ष्य तकनीक में दो समरूप श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 45 कार्ड हैं। इन परीक्षण में रोसा परीक्षण के विपरीत निम्न तीन विशेषताएं हैं। प्रथम, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं की संख्या नियंत्रित तथा अपेक्षाकृत स्थिर होती है। द्वितीय, प्रतिक्रियाओं की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रहने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में परस्पर तुलना करना सार्थक होता है। तृतीय, समरूप श्रृंखला होने के कारण विश्वसनीयता की गणना करना सरल होता है। अपनी इन मनोमितीय साइकोमेट्रिक विशेषताओं के कारण इसे एक नवीन परीक्षण माना जाता है। प्रायः प्रत्येक कार्ड के लिए प्रयोज्य से केवल एक ही प्रतिक्रिया मांगी जाती है। इस परीक्षण को व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूह पर एक साथ भी प्रशासित किया जा सकता है। प्रयोज्यों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का अंकन एवं व्याख्या काफी सीमा तक रोसा परीक्षण की भांति होती है। मसी लक्ष्य परीक्षणों का उपयोग समूह परीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है, परंतु उस स्थिति में इनसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता और भी संदिग्ध हो जाती है। समूह परीक्षण के रूप में इनका समूह उपयोग समूह प्रवृत्तियों तथा समूह विशेषताओं के अध्ययन में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, परंतु व्यक्तियों के व्यवहारों, दृष्टिकोणों आदि का गहन अध्ययन संभव नहीं है। समूह परीक्षण के रूप में रोसा परीक्षण के कार्डों को स्क्रीन पर किसी निर्धारित अवधि तक दिखाकर अनेक व्यक्तियों से अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखकर अभिव्यक्त करने के लिए कहा जा सकता है। मसी लक्ष्य परीक्षण को सामूहिक परीक्षण के रूप में प्रयोग करने के एक अन्य विधि के अंतर्गत परीक्षण को बहुविकल्पात्मक बाध्य चयन मल्टीपल फोर्स्ड च्वाइस रूप दिया जा सकता है। इस विधि में प्रत्येक कार्ड के साथ प्रतिक्रियाओं की एक सूची प्रस्तुत की जाती है तथा प्रयोज्यों को इस सूची से एक सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करना होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थीमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट टैट TAT टैट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक अन्य प्रसिद्ध विधि है। इसकी रचना सन 1935 में C.D. मॉर्गन तथा H.A. मुरे ने की थी। इस परीक्षण की निर्देश पुस्तिका बाद में मुरे के नाम से सन 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई। इस परीक्षण की आधारभूत मान्यता है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उससे उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस कहानी के विभिन्न पात्रों के द्वारा वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर देता है। कहानी के कथानक से उस व्यक्ति की आवश्यकताओं, चिंताओं, इच्छाओं, विचार प्रक्रियाओं, परिपक्वता स्तर, आत्म प्रतिमा, सामाजिक समायोजन, दृष्टिकोण आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 कार्डों पर अस्पष्ट काले सफ़ेद रंग से चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा होता है। ये चित्र जीवन की साधारण घटनाओं से संबंधित होते हैं। प्रयोज्य के यौन भेद तथा परिपक्वता के अनुरूप 21 तथा इनमें कम कार्डों का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। कुछ कार्ड लड़कों के लिए होते हैं, कुछ कार्ड लड़कियों के लिए होते हैं, कुछ कार्ड 14 से वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए होते हैं, जबकि कुछ कार्ड 14 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए होते हैं, जबकि कुछ कार्ड सभी के लिए होते हैं। लड़कों वाले कार्ड को कैपिटल बी, लड़कियों वाले कार्ड को कैपिटल जी, पुरुषों वाले कार्ड को कैपिटल एम तथा महिलाओं वाले कार्ड को कैपिटल एफ से इंगित किया जाता है। इस प्रकार से चिन्हित कुल कार्ड 31 निम्नवत होते हैं: 1, 2, 3, 3 BM, 3 G, कैपिटल एफ, 4, 5, 6 BM, 6 GF, 7 BM, 7 GF, 8 BM, 8 GF, 9 BM, 9 GF, 10, 11, 12 M, 12 F, 12 BG, 13 MF, 13 B, 13 G, 14, 15, 16, 17 BM, 17 GF, 18 BM, 18 GF, 19, 20। स्पष्ट है कि 11 कार्ड सभी के लिए, 7 कार्ड लड़कों व पुरुषों के लिए, 7 कार्ड लड़कियों व महिलाओं के लिए, 1 कार्ड लड़के व लड़कियों के लिए, 1 कार्ड पुरुषों के लिए, 1 कार्ड महिलाओं के लिए, 1 कार्ड पुरुषों व महिलाओं के लिए, 1 कार्ड लड़कों के लिए तथा 1 कार्ड लड़कियों के लिए है। स्पष्ट है कि प्रयोज्य की आयु तथा यौन भेद के आधार पर उपरोक्त 31 कार्डों में से उचित कार्डों का चयन कर लिया जाता है। प्रयोज्य को ये कार्ड एक एक करके दिखाए जाते हैं तथा उनसे कहा जाता है कि कार्ड में दिखाए दृश्य को ध्यान में रखकर वे कोई छोटी सी कहानी बनाएं। प्रत्येक कार्ड के लिए अलग अलग कहानी बनानी होती है तथा प्रायः प्रत्येक कहानी के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। कहानी बनाते समय प्रयोज्य को 4 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा जाता है। प्रथम, चित्र में दिखाई घटना से पहले क्या बातें घटित हुई होंगी। द्वितीय, इस समय चित्र में क्या घटित हो रहा है। तृतीय, चित्र में दिखाए पात्र क्या सोच व अनुभव कर पा रहे हैं। चतुर्थ, इसका क्या अंत होगा। अंत में खाली कार्ड दिया जाता है तथा प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह इस पर जो चित्र चाहें सोचें तथा उस पर कहानी बनाएं। कहानी प्रयोज्य से लिखवाई भी जा सकती है तथा बोलकर सुनाई भी जा सकती है, जिसे परीक्षणकर्ता नोट कर सकता है। समूह के रूप में टेट प्रशासन करते समय चित्रों को एक एक करके पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया भी जा सकता है तथा परीक्षार्थी से कहानी लिखवाई भी जा सकती है। पूरे परीक्षण में लगभग 1 घंटे का समय लगता है तथा इसे 2 सत्रों में विभक्त किया जा सकता है। परीक्षण प्रशासन के बाद में प्रयोज्य से उसके द्वारा बनाई हुई कहानियों के संबंध में पूछताछ की जाती है, जिसके अंतर्गत असाधारण सूचनाओं, पात्रों के नामों, तिथियों, स्थानों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जानकारी परीक्षार्थी के द्वारा तभी कहानी बनाने के उपरांत ही की जाती है, अन्यथा परीक्षार्थी कहानी बनाते समय सचेत हो सकता है तथा उसके द्वारा बनाई जाने वाली कहानियों में उनके भावों के प्रशिक्षण में बाधा आ सकती है। अंकन तथा विश्लेषण, स्कोरिंग एंड एनालिसिस। प्रयोज्यों के द्वारा बनाई गई कहानियों का अंकन तथा विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास किया जाता है। टेट के अंकन की कोई एक निश्चित विधि निर्धारित नहीं है, विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप भिन्न भिन्न अंकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर भी परीक्षार्थी के द्वारा लिखित कहानियों का उपयोग करके उसके व्यक्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मुरे ने कहानियों का विश्लेषण कहानी के नायक की मांगों तथा वातावरण के दबावों के आधार पर करने का सुझाव दिया है। उसके अनुसार इन दोनों भागों को निम्नांकित 6 वर्गों के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है। प्रथम, कहानी का नायक कौन है जिनके साथ प्रियोजन ने आत्मीयकरण किया। द्वितीय, नायक की आवश्यकताएं, प्रवृत्तियां तथा भावनाएं क्या हैं। तृतीय, वातावरण में कौन कौन से दबाव दर्शाए गए। चतुर्थ, कहानी के नायक तथा वातावरण के फलस्वरूप क्या परिणाम आ रहे हैं। पंचम, कहानी का क्या प्रसंग है, अर्थात नायक की आवश्यकताओं की वातावरणीय दबावों से क्या अंतर्क्रिया होती है। यह वास्तव में पूर्ववर्ती 4 बिंदुओं का संश्लेषण है जिसमें विभिन्न बातों को परस्पर संबंधित रूप में देखा जाता है। षष्ठ, कहानी के कथानक के चयन तथा उसके विवेचन में निहित रुचियों तथा भावनाओं आदि का विश्लेषण। बेलेक BALLAC ने 10 प्रवृत्तियों के आधार पर टैट की कहानियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। ये 10 प्रवृत्तियां हैं। प्रथम, कहानी का मुख्य सार या प्रसंग, मेन थीम। इसके अंतर्गत कहानी को वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, नैदानिक, प्रतीकात्मक तथा व्याख्यात्मक स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। द्वितीय, मुख्य नायक। कहानी के मुख्य नायक से अभिप्राय है वह पात्र जिसके बारे में सर्वाधिक वर्णन किया जाए। प्रयोज्य अपने सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक गुणों को कहानी के मुख्य नायक में प्रक्षेपित करता है। तृतीय, नायक की मुख्य आवश्यकताएं तथा चालक, मेन नीड्स एंड ड्राइवर्स ऑफ द हीरो। इसके अंतर्गत वर्णित कथानक से नायक के व्यवहार में परिलक्षित होने वाली आवश्यकताओं तथा चालकों का उल्लेख किया जा सकता है। चतुर्थ, वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि प्रयोज्य कहानी के वातावरण का किस रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात वातावरणीय दबाव, एनवायरमेंटल प्रेस को ज्ञात किया जाता है। 5, चित्र में देखी बातें तथा उनके प्रति प्रतिक्रिया। कहानी में कौन कौन से पात्र देखे गए हैं तथा उनके प्रति क्या अभिव्यक्ति है जिसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। षष्ठ, प्रमुख अंतर्द्वंद, सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट। कहानियों में प्रयोज्य की विभिन्न इच्छाओं के अंतर्द्वंद्वों की जानकारी प्राप्त की जाती है। 7, चिंता का स्वरूप, नेचर ऑफ एंजाइटी, ANXIETY। कहानियों से प्रयोज्य की चिंताओं तथा उनके कारणों का पता लगाया जाता है। 8, मुख्य सुरक्षात्मक उपाय, मेन डिफेंसेस। प्रयोज्य कहानी में अंतर्द्वंद से बचने के लिए जिन सुरक्षात्मक मनोरचनाओं का प्रयोग करता है उन्हें लिख लिया जाता है। 9, अति अहम की उपयुक्तता, एडिक्वेसी ऑफ सुपर ईगो। कहानियों के विश्लेषण से यह ज्ञात किया जाता है कि प्रयोज्य के अति अहम की उपयुक्तता क्या है। 10, अहम संगठन, इंटीग्रेशन ऑफ द ईगो। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कहानी का नायक परिस्थिति के अनुरूप अपनी इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्य तरीकों से किस प्रकार करता है। परिणाम सारांश, समरी ऑफ रिजल्ट्स। समस्त कहानियों का विश्लेषण करने के बाद प्राप्त परिणामों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। प्रयोज्य के द्वारा विभिन्न कहानियों में प्रयुक्त कथानकों की प्रकृति, पात्रों के यौन भेद, वातावरण, दबाव, सामाजिक संबंधों का निरूपण, कथानक के सुखांत दुखांतता आदि के आधार पर उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं की व्याख्या की जाती है। टैट की विश्वसनीयता तथा वैधता भी विभिन्न विधियों का प्रयोग करके ज्ञात की गई। प्रशिक्षित परीक्षकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर इसकी विश्वसनीयता तथा वैधता संतोषप्रद प्राप्त हुई। रोसा परीक्षण तथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में मुख्य अंतर इस बात का है कि रोसा परीक्षण की सहायता से व्यक्तित्व की संरचना तथा संगठन की जानकारी करने का प्रयास किया जाता है, जबकि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। बालक अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रेंस एप्रेसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट मुख्यतः प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। बालक अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रेन एप्रेसिएशन टेस्ट की रचना 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने हेतु लियोपोल्ड बेलक LEOPOLED लियोपोल्ड BELLAK लियोपोल्ड बेलक के द्वारा सन 1948 में की गई थी। इस परीक्षण में 10 चित्र होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण सीनियर एप्रेसिएशन टेस्ट प्रौढ़ व्यक्तियों की व्यक्तित्व संरचना, समायोजन समस्याएं, व्यवहारिक विकृतियों, तनावों, चिंताओं, प्रेरणाओं तथा प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन करने के लिए लियोपोल्ड बेलक ने वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण SAT का निर्माण किया। यह परीक्षण 50 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़ों के लिए अधिक उपयुक्त है, परंतु कम आयु के व्यक्तियों पर भी इसका प्रयोग संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है। इस परीक्षण में 16 कार्ड हैं जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमियों में कुछ मानवीय व्यवहार एवं परिस्थितियां बताई गई हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट, बालक अंतर्बोध परीक्षण कैट तथा वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण सेट का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया। सन 1960 में किए गए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के भारतीय संशोधन में निम्नवत कुल 14 कार्ड हैं। 1, 2, 3 MB, 3 FG, 4 MB, 4 FG, 5, 6, 7, 7 A, small d, 8, 9, 10 ब्लैंक कार्ड। स्पष्ट है कि इन 14 कार्डों में से 9 कार्ड सभी के लिए, 2 कार्ड पुरुषों के लिए व लड़कों के लिए हैं, 2 कार्ड महिलाओं व लड़कियों के लिए हैं तथा 1 अतिरिक्त कार्ड है। प्रयोज्यों के लिंग भेद के अनुरूप 14 कार्डों में से 11 कार्डों का चयन किया जाता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण कैट का भारतीय अनुकूलन भी सन 1960 में किया गया था। इसके भारतीय अनुकूलन में भी मूल CAT के समान 10 कार्ड हैं। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण SAT का भारतीय अनुकूलन सन 1978 में किया गया था। इसके भारतीय अनुकूलन में भी मुख्य SAT के समान 10 कार्ड हैं। इन तीनों ही परीक्षणों में चित्रों को भारतीय परिवंश के अनुरूप परिवर्तित किया गया है। CAT के कुछ मूल चित्रों को छोड़ दिया गया है तथा कुछ चित्रों के आधार पर अन्य चित्र सम्मिलित किए गए हैं। सारांश, प्रक्षेपण को व्यक्तित्व मापन की एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। प्रक्षेपण में व्यक्ति के सम्मुख किसी असंरचित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर दी गई प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों को उनमें प्रयुक्त प्रतिक्रिया तकनीक के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। साहचर्य तकनीक, रचना तकनीक, पूर्ति तकनीक, क्रम तकनीक तथा अभिव्यक्ति तकनीक। हरमन रोसा के द्वारा विकसित मसी लक्ष्य परीक्षण तथा हेनरी ई मुरे के द्वारा तैयार किया गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 2 सर्वाधिक प्रचलित प्रक्षेपी परीक्षण हैं। रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिनमें से प्रत्येक पर स्याही के सममित धब्बे बने होते हैं। 5 धब्बे काले रंग में, 2 धब्बे 2 रंगों में तथा 3 धब्बे 3 रंगों में होते हैं। व्यक्ति को ये कार्ड एक एक करके एक निश्चित क्रम में दिखाए जाते हैं। तथा धब्बे में उसे क्या दिखाई दे रहा है या पूछा जाता है। व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को उनकी स्थिति निर्धारक विषय वस्तु व मौलिकता के आधार पर विश्लेषित किया जाता है तथा इस आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। मरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। एक कार्ड सादा होता है जबकि 30 कार्डों पर चित्र बने होते हैं। व्यक्ति की आयु व यौन भेद के आधार पर प्रायः 21 कार्ड अथवा इससे कम कार्डों का चयन करके प्रयोज्य को एक एक करके क्रम से ये कार्ड दिखाए जाते हैं तथा उनसे कहा जाता है कि प्रत्येक कार्ड पर एक छोटी सी कहानी बनाओ। खाली कार्ड सबसे अंत में दिया जाता है। प्रयोज्य खाली कार्ड पर स्वयं ही चित्र सोचता है तथा उस पर कहानी बनाता है। कहानियों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बालक ने बालकों के लिए बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण SAT का निर्माण किया। ये दोनों परीक्षण क्रमशः 3 से 10 वर्ष के लिए तथा 5-50 वर्ष से अधिक आयु वर्गों के लिए उपयुक्त हैं।